ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी हरि भक्तों एवं माता को हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के पांचवें दिन की हरि कथा एवं हरि कीर्तन में एकत्रित सभी हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से आज हम श्री जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी का चरित्र सुनने का प्रयास करते हैं। रामानंदाचार्य जगतगुरु हुए थे, ऐसे महान वैष्णव थे वो। रामचंद्र जी ने जिस प्रकार वानरों के सहायता से समुद्र को पार किया था, समुद्र को पार कर पाना वो भी एक बड़ा दुर्लभ कार्य है, लेकिन भगवान ने वानरों की मदद से ये भी कार्य पूर्ण किया जो असंभव जैसा लगता था, लेकिन इस कार्य को भी उन्होंने किया। और ये पुल भगवान ने 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा बनाया था। त्रेता की बात है, उसके बाद तो पृथ्वी के अंदर उसके स्थानों में कई परिवर्तन हुए। 100 योजन का मतलब होता है 1200 किलोमीटर और 10 योजन मतलब 120 किलोमीटर। बारह सौ किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बनाया था। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा पुल, बिना पिलर के, बिना सीमेंट, बिना स्टील के, सिर्फ मात्र भगवत नाम से पत्थरों को रख दिया और पुल का निर्माण हो गया। राम जी ने कहते सेना को पार करने के लिए पुल बनाया था। रामानंदाचार्य जो राम जी के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने संसार के जीवों को भवसागर पार करने के लिए भक्ति रूपी पुल बनाया था। रामानंदाचार्य ने किनकी सहायता से कार्य किया था? रामानंदाचार्य के अनेक शिष्य थे, उन अनेक शिष्यों में मुख्य द्वादश शिष्य थे, बड़े महान, कबीरदास जी, सुखानंद जी, अनंतानंद जी, सुरानंद जी, पद्मावती जी, नरहरियानंद जी, पीपा जी महाराज, भवानंद जी, रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी, श्री सुरानंद जी, ये रामानंदाचार्य के प्रधान 12 शिष्य थे, जिनकी मदद से उन्होंने विश्व भर में इस भक्ति को स्थापित किया था। और भक्ति को इस कदर उन्होंने बढ़ाया था कि उनकी कृपा के माध्यम से संसार का जीव भव सागर को पार उतर जाए। तो कहते रामचंद्र जी ने तो नपातोला हुआ पुल बनाया था जिसका एक आकार फिक्स था। रामानंदाचार्य ने तो कहते अनंत गुना बड़ा भव सागर को पार कर सके ऐसा पुल बनाया था, और वो भी प्रत्येक जीव के लिए बनाया था। इसलिए राम जी से भी बड़ा कार्य उन्हीं के ही स्वरूप के रूप में प्रकट हुए रामानंदाचार्य जी ने किया था, जो भक्त भाव में प्रकट हुए थे। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो दया करने में भगवान से भी दो कदम आगे रहते हैं। इसलिए जो करुणामयी भक्ति है वो भगवान से प्राप्त होने की बजाय भक्तों से अति शीघ्रता से प्राप्त होती है। इसलिए कलयुग में महान वैष्णवों की शरण में जाने से भक्ति सुगमता से सरलता से प्राप्त होती है। इससे बड़ा उपाय और कोई है ही नहीं भगवत भक्ति प्राप्त करने का। इसलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु संग से ही सारी सिद्धि हो जाएगी, यही विशेषता है संतों की। तो रामानंदाचार्य कृपा करने में राम जी से भी बढ़कर रहे। राम जी ने तो वो जो पुल था वो बाद में विभीषण जी की प्रार्थना से तोड़ भी दिया था, कुछ अवशेष के रूप में रह गया है। क्योंकि विभीषण जी कहते प्रभु अगर आपने ऐसा पुल जो बना के रखा है सुगमता से लंका प्राप्त करने का, तो लंका की रक्षा तो खतरे में आ जाएगी ना, फिर इससे तो हर व्यक्ति आ जाएगा फिर ऐसे। विभीषण जी की प्रार्थना से राम जी ने फिर उसको बाद में खंडित भी कर दिया। लेकिन रामानंदाचार्य जी ने जो पुल बनाया, जो कृपा जगत के लोगों के ऊपर की, वो तो आगे आने वाले संतों के माध्यम से हमेशा चलती रही। इसलिए ये जो समुद्र है ना, जगत समुद्र अपार तासु ते जन्म मरण तट, एक तरफ जन्म और एक तरफ मरण का तट है। ये समुद्र तो अपार है, कोई पार नहीं है इसका। काम क्रोध मोह लोभ तासु में लहरी महाभट, अनेक अनेक लहरें उठती रहती है काम और क्रोध रूपी। समुद्र के में उठने वाली जो लहरें है ना, वो थोड़े क्षण के लिए भी बंद नहीं होती है, हमेशा उठती रहती है। कोई सोचे स्नान करना है, राह देखता हूँ लहरें बंद हो तो जाके स्नान करता हूँ, वो जीवन पर तट पर ही बैठा रहेगा, कभी स्नान करने का नंबर ही नहीं लगेगा उसके का। तो इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी अनेक अनेक प्रकार की विषय रूपी लहरें उठती रहती है। मोह ग्राह आदि प्रबल निगल जावे संसार, बड़े बड़े मगर है उसमें मोह रूपी, पूरे संसार को खा रहे निगल रहे, पूरा संसार उनमें अंधा पड़ जाता है और उसी में डूब जाता है। तो इस प्रकार दीन रघुनाथ बिना कौन छुड़ावे आनी, भगवान की कृपा के बगैर ये भव सागर को फिर हमको कौन पार लगवाएगा। भगवान, भगवान का नाम या भगवान के भक्त, इनके बिना हमको कोई पार नहीं लगा सकता। व्यक्ति संसार के अंदर एक जलाशय पार करने में असमर्थ है, भव संसार क्या पार करेगा। इसलिए व्यर्थ में व्यक्ति को अहम नहीं करना चाहिए, हम सब कर सकेंगे। व्यक्ति को अपनी योग्यता समझनी चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्षण भंगुर जीवन मिला है, उसमें भी शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हैं। चल गया उतने दिन चल गया, कब रुक जाएगा ये हम नहीं जानते। अच्छा भला शरीर कब खत्म हो जाएगा हमारे के ध्यान में नहीं है, हमारे वश में भी नहीं है। जितने दिन अच्छे हो उतने दिन भजन कर लिया जाए। राह नहीं देखनी चाहिए वृद्धावस्था की, आएगी वृद्धावस्था तब करेंगे। वृद्धावस्था की राह तो मूर्ख लोग देखते हैं। वृद्धावस्था में नया शरीर, नई बुद्धि, नया फुर्ती, नई ओज थोड़ी मिल जाएगी, क्या उस समय भजन करेंगे? वृद्धावस्था तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ खा जाती है, उस समय क्या भजन होगा हमारे से? उस समय तो व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि कभी कभी ऐसा सोचता है कि प्रभु मृत्यु कब आएगी। वो तो मौत मांगता है, और ऐसी अवस्था में हम सोचेंगे कि प्रभु भजन करेंगे। अरे अभी यौवन अवस्था में थोड़ा सा कष्ट होता है शारीरिक, तो भी भजन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वृद्ध अवस्था में सतत कष्ट होता रहेगा, उस समय क्या भजन होगा हमारे से? ये संभव नहीं है। इसलिए वृद्ध अवस्था की राह तो आलसी और मूर्ख लोग देखा करते हैं। आज नहीं बाद में करेंगे, बाद में कैसे संभव हो जाएगा जब आज ही नहीं हुआ हो रहा है तो। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक कार्य के लिए शीघ्रता करे, विलंब ना करे, आज नहीं बाद में करेंगे ऐसा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान संसार के ऊपर धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, या तो खुद प्रकट होते हैं या तो अपने भक्तों को प्रकट करते हैं जिनके माध्यम से संसार में धर्म बचा रहे। भगवान युग 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 में भी आते हैं, और भगवान के अलावा उन युगों में उनके भक्त भी आते हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं, या भगवान के द्वारा जो स्थापित किया गया धर्म है उसको और प्रसारित करते हैं। तो रामानंदाचार्य ने भी कुछ ऐसा ही कार्य किया था। 13वीं 14वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत के अंदर अनेक अनेक यवनों का उपद्रव था। यवन जिनका खानपान बड़ा अशुद्ध है, जिनके विचार बड़े अपवित्र है, और जो ये मानते हैं कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बाकी जीवों को मार देना चाहिए। ये कौन सा धर्म है जो दूसरों को मार के जीवित होता है? धर्म जीवन जीने की प्रेरणा देता है, आध्यात्मिक जगत में उन्नति कराता है। ये कौन सा धर्म है जो दूसरों को मारकर अपना जीवन बचाता है? यानी कि वो इतने भयभीत है कि दूसरों को मारकर अपनी रक्षा चाहते हैं। उनके हृदय में हिंसा इतनी प्रबल होती है कि वो लोगों को मारने में अचकाते नहीं है। तो अत्यधिक यवनों का अत्याचार था। चाणक्य पंडित ने भी यवनों का अत्याचार खूब सहन किया था, और अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने विरोध भी किया यवनों का, और तब जाके भारत भूमि में संस्कृति बच गई थी। हमने किसी के ऊपर सामने से अत्याचार नहीं करना, लेकिन हमारे धर्म की रक्षा हमने करनी चाहिए, संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। हमारे दसों गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह साहब से लेके अनेक और गुरुओं ने, ये सनातन धर्म या दूसरे भाषा में हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए खूब बलिदान दिए। शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी महाराज, अनेक राजस्थान के राजा लोग, खूब बलिदान दिए उन्होंने, तब जाके ये जो हम आज देख रहे हैं धर्म बचा हुआ है, हरि भक्ति हम कर पा रहे हैं, मंदिर बन पा रहे हैं, ये उन लोगों के बलिदानों से और महान महान भक्तों ने जो हरि भजन किए उनकी शक्ति से हुआ है। अन्यथा कलयुग में जो यवन होते हैं वो तो विशेष करके कलयुग के ही चेले होते हैं, इसलिए उनमें कलयुग प्रधान होता है उनके स्वभाव में भी। इसलिए प्रायः इस युग में उनकी बोलबाला बनी रहती है, लेकिन फिर भी वैष्णव लोगों का यह प्रयास रहता है कि भगवान के द्वारा स्थापित ये जो धर्म है, भक्ति है, उसकी रक्षा की जाए। और आज अनेक लोग कर भी रहे, हमने भी उसमें अपना योगदान देना चाहिए। सिर्फ लड़के ही धर्म की स्थापना नहीं की जाती है, अपने धर्म को अच्छी तरीके से पालन करके भी व्यक्ति धर्म की स्थापना कर सकता है। अपने धर्म में दृढ़ रहे, अपने नियमों में दृढ़ रहे, अपनी आराधना प्रभु भक्ति में दृढ़ रहे, तो भी धर्म की स्थापना हो सकती है। तो ये घटना रामानंदाचार्य के प्रकट होने के पूर्व की है, जिसमें मुसलमान लोग जिनको हम यवन रूप में संबोधन करते हैं, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अनेक अत्याचार गुजारे थे और जबरदस्ती उनको मुसलमान बना रहे थे। जो नहीं स्वीकार करते थे मुसलमान बनना, उनको मार देते थे। तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार था जिन्होंने मुसलमान बनने के लिए मना किया था, तो उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिया। उनमें से उनका एक 14 वर्ष का मनसुख नाम का पुत्र था, वो वहां से अपने आप को बचाते हुए कैसे भाग गया। बड़ा दुखी था, उसने अपने आंखों के सामने सब ये दृश्य देखे, जैसे कश्मीर में अनेक लोगों ने दृश्य देखे थे अपने परिजनों के, लाखों लाखों लोगों को बेघर किया था, मारा गया था, बहुत कष्ट हो दिया था उन्होंने। हमारे वैष्णव की कैसी बुद्धि थी ना, वैसे अनुरूप हमने चलना चाहिए। आगे आएगी समझ के रामानंदाचार्य क्या सोचते हैं, चाणक्य पंडित जी ने क्या सोचा था, हमने इस तरीके से अपने आप को चलाना चाहिए। वो जंगल में चला गया, कठोर तपस्या करने लगा, बड़ा दुखी था, लेकिन अभी उससे कुछ हो नहीं सकता था, अकेले से कठोर तपस्या की उसने, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भगवान ने जब उसको देखा ना कि दुखी और बड़ी आस्था के साथ तपस्या कर रहा है, तो राम जी को बड़ी दया आई और राम जी उसी के स्वरूप का मित्र जैसा रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए वन में। राम जी का रूप देख के राम जी के प्रति आकर्षित भी हो गया और राम जी के साथ आनंद से खेलने कूदने लगा। लेकिन जब उसको घटना याद आई ना, तो पुनः दुखी हो गया। जब वहां राम जी अप्रकट हो गए तो उसको एकदम से पुरानी घटना याद आ गई, तो दुखी हो गया। दुखी हो गए, खूब तड़प के रोने लगा। तब राम जी पुनः अपने मूल रूप में प्रकट हुए, तो उसने राम जी को प्रणाम किया और राम जी की स्तुति की और भगवान से क्या मांगता है, प्रभु ये यवन किसी को नहीं जीने दे रहे, सबको कष्ट दे रहे, कुछ तो कृपा करो ताकि धर्म बच जाए, उसकी रक्षा हो। तो रामचंद्र जी ने उसको आश्वासन दिया था कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, इस दुर्दशा को मिटाने के लिए नजदीक के भविष्य में ही स्वयं राम जी ही एक अंश रूप में, एक भक्त भाव रूप में प्रकट होंगे, ऐसा भगवान ने उनको आश्वासन दिया। उसके बाद फिर क्या कथा प्रकट होती है कि ऋषिकेश के अंदर ब्राह्मण दंपति पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे, अनेक अनेक वर्षों तक प्रार्थना करने के बाद भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि तुम्हारे वहां पर पुत्र प्रकट होगा। वो जो माता थी सुशीला, वो कहते प्रभु आप ऐसी कृपा करो आपके जैसा पुत्र प्रकट हो, भगवान के जैसे भगवान ही होते हैं, दूसरा नहीं होता कोई। तो पुण्य सदन जो ब्राह्मण थे वो बड़े प्रसन्न हो गए भगवान के वचन से। वो ब्राह्मण दंपत्ति दोनों समय के प्रभाव में वो शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बाद में प्रयाग में पुनः उनका जन्म हुआ। और पुनः जब जन्म हुआ उनका, तब देव संयोग से वो दोनों पति पत्नी हुए और उन्हीं के घर पे स्वयं रामचंद्र जी की इच्छा से विक्रम संवत 1256 में माघ कृष्ण सप्तमी को उनके वहां पर एक पुत्र का जन्म होता है और वो आशीर्वाद स्वयं भगवान देते हैं। जब उनकी माता भगवान के दर्शन करने के लिए जब मंदिर में जाती है ना, तो ऐसा भगवान के सामने झोली फैला के मांगती है, प्रभु पुत्र दो, कृपा करो। तो भगवान अपनी फूलमाला और दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिणायन शंख जिसको कहते हैं, ऐसा शंख उसकी झोली में डाल देते हैं। वो लेकर घर पे आती है, अपने पति को देती है, कहते भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। और फिर भगवान की कृपा से कुछ समय के बाद उनके घर पे विक्रम संवत 1256 में पुत्र का जन्म होता है, माघ कृष्ण सप्तमी के दिन चित्रा नक्षत्र और सिद्ध योग कुंभ लग्न में। और जन्म से उनका नाम रखा जाता है रामदत्त। वास्तव में और ये कोई नहीं था, स्वयं राम जी ही एक रूप में प्रकट हुए थे, रामानंद आचार्य जी के रूप में, भक्त रूप में प्रकट हुए थे। तो रामदत्त जन्म से ही बड़े भक्ति संपन्न गुणों से युक्त थे। 5 वर्ष की जब अवस्था हुई उनकी, तब अनेक अनेक प्रकार के संस्कार किए गए। उसके पहले बचपन में उनका अन्नप्राशन संस्कार किया गया था, तो उनकी माता ने अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे वहां, नमकीन भी बनाए थे, मीठे भी बनाए थे। और रामदत्त को सामने बिठा दिया, सारे व्यंजनों के बीच में उन्होंने खीर उठाई, फिर खीर रखवाई, वापिस चेक किया, फिर खीर ही उठाई। खीर उनको बड़ी प्रिय रही फिर बाद में सारे व्यंजनों के बीच में, और खीर को पसंद करते थे। आगे भी जीवन में उन्होंने खीर ग्रहण की बाद में। तो ऐसे अनेक प्रकार के उनके संस्कार किए गए। एक दिन के प्रसंग में उनके पिताजी भगवत पूजा कर रहे थे और मंदिर में वहां पर शंख रखा था, जो शंख भगवान ने उनको दिया था वो शंख वहां पर रखा हुआ था। बालक आया, शंख उठा और बजाना लगा और सुंदर से बजाया भी। पिताजी वैसे खुश तो हुए शंख बजाए, लेकिन ये बात से थोड़ा दुखी हुए, ये तो भगवान की पूजा में रखा हुआ शंख था, इसने बजा दिया, फिर ये शंख तो अभी इसने झूठा कर दिया, भगवान की सेवा में फिर इसका उपयोग करे कि ना करे। तो जिन भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे ना, वेणी माधव भगवान, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ये शंख हाथ से बालक को ही दे दो और बालक इसको बजाया करेगा। तो सुबह मध्यान्ह में और संध्या समय और रात्रि समय, दिन में 4 बार शंख बजाते थे वो जोर जोरों से। बचपन से उन्होंने वो शंख अपने पास रख लिया था और शंख जब बजाते थे तो आसपास सबको पता चल जाता था कि रामदत्त शंख बजा रहे हैं। उनके पिताजी ने सोचा कि इनको गीता भागवत रामायण आदि शास्त्र पढ़ाए जाए। उन्होंने प्रयास किया पढ़ाने का, बालक ने उस समय कंठस्थ भी कर लिया, 7 वर्ष की अवस्था में सब कुछ कंठस्थ कर लिया। और उनके पिताजी प्रयाग कुंभ में लेकर उनको गए वहां से, तो वहां पर उन्होंने बड़े बड़े संतों के बीच में 7 वर्ष की आयु में इन ग्रंथों के ऊपर बहुत अच्छा वक्तव्य भी दिया और सभी लोगों ने सुन के आश्चर्य का अनुभव किया। 7 वर्ष का बालक और इतनी दिव्य बुद्धि, सारी चीज याद है उनको और सटीक सटीक शास्त्रों को बोलते हैं। तब सबने एक मत से विचारा कि बालक आपके यहाँ जो जन्मा है ना, साधारण मनुष्य नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति है ये, अन्यथा सामान्य मनुष्य में इतने उच्च लक्षण प्रकट नहीं होते कभी। 8वें वर्ष में माघ शुक्ला द्वादशी को 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद जो संस्कार कराने वाले जो उनके पुरोहित थे, उन्होंने पलाश दंड बनाकर दिया उनको। और काशी विद्या अध्ययन करने जा रहे, ऐसा करके क्या करना होता है, दंड लेके कुछ कदम चलना होता है, काशी के लिए रवाना हुए और फिर आ जाने का वापस। ऐसा जैसे गुजरात में देखा है हमने कि घर की कोई कन्या जब ब्याह करती है तो उसको विदा करने के लिए भाई गाड़ी में बैठता है फिर नीचे उतर जाता है, मतलब विदा कर रहा है, गाड़ी में बैठा फिर नीचे उतर गया, अभी जाओ। तो इन्होंने क्या किया, दंड लेके चलने पड़े। तो पूरे जी कहते हो गया, इतना ही चलना होता है, काशी प्रस्थान जैसा हो गया, अब आ जाओ। कहते नहीं, मुझे तो सच में काशी जाना है पढ़ाई करने के लिए आगे। अब माता पिता समझाने लगे, बेटा ऐसा ही नियम होता है, जाने की जरूरत नहीं है। कहते नहीं, मुझे लेकिन सच में काशी जाना है। अब इन्होंने जिद पकड़ ली। अब 8 वर्ष की अवस्था में उनको काशी भेजने में माता पिता का मन नहीं था, क्योंकि पुत्र से बड़ा लगाव था। तो पुत्र की इच्छा के लिए उन्होंने प्रयाग छोड़ दिया और सभी जाके काशी में बस गए। तो काशी में ओमकार शर्मा उनके मामा रहते थे, मामा के वहीं पर ही चले गए और मामा से उन्होंने काशी में रह के न्यायिक आदि शास्त्रों को पढ़ा और काशी में ही अपना निवास स्थान बनाया उन्होंने। तो इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते उनकी माता क्या देखती है कि पुत्र के अंदर बड़ा वैराग्य है। जब पुत्र में वैराग्य आता है ना, तो माता पिता घबरा जाते हैं, भाई ये होता है कि अभी हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए प्रायः माता पिता ये बात सहन नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के लिए इच्छुक हुए थे तो सची माता भी घबरा गई थी। ये प्रायः देखने को मिलता है। माध्वाचार्य जी ने जब संन्यास लिया था तो उनके माता पिता भी बड़े दुखी हो गए थे, नहीं चाहते थे कि पुत्र संन्यास ले। लेकिन महान महान आचार्यों ने अनेक लोगों के जीवन के लाभ के लिए वैराग्य का रास्ता अपनाया और इस रास्ते में भगवत भक्ति करने की बड़ी सुविधाएं हैं। महान संतों के द्वारा ये चलाई गई पद्धति है, अगर इसमें मति बन जाए किसी की तो बहुत अच्छी बात है, इससे उत्तम मार्ग मिलना कठिन है। भक्ति हर आश्रम में हो सकती है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन साधुओं के बीच में वैराग्य वृत्ति से जो भक्ति होती है वो शीघ्र संपन्न होती है, उसमें निखार आता है, क्योंकि उसमें जड़ आसक्ति जल्दी टूटती है, विषयों का बंधन जल्दी खुल जाता है, मोह होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से जब व्यक्ति दूर हो जाता है तब भी मोह बनना भी कम हो जाता है। तो उनकी माता ने क्या किया, जब भी बालक जब वैराग्य लेता है तो संसार में एक ही ब्रह्म अस्त्र है, वो है उसका विवाह करा दिया जाए। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य ले रहे थे तो उनके माता पिता ने भी यही किया था, विवाह करा दो कहते, उसके बंधन में बंध जाएगा। मतलब संसार के लोग भी मानते कि बहुत बड़ा बंधन है, जब वो मानते हैं बहुत बड़ा बंधन है तो फिर भक्ति कैसे होगी, जब खुद ही स्वीकार कर रहे हैं बंधन है, कहते बांधो इसको तो हथकड़ी से थोड़ी बांधेंगे, रस्सा थोड़ी लगाएंगे, कहते रस्सा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जीव संसार में प्राय भोगों में आसक्त होता है, इसलिए स्त्री नाम का भोग्य पदार्थ उसको दे दिया जाए अपने आप आसक्त हो जाएगा, कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, फिर वहीं बंधा रहेगा। इसलिए संसार के लोग समझते हैं इस बात को कि यौवन अवस्था में पुत्र को अगर स्त्री रूपी माया से बांध दिया जाए तो वहां से हट नहीं पाएगा फिर, क्योंकि वो बहुत बलवान होती है। सामान्य रूप में जीव को फिर वैराग्य की तरफ नहीं जाने दे सकती वो, वो इच्छा भी करे ना तो भी नहीं जाने देगी वो, प्राय इच्छा ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भाग्यशाली इच्छा कर भी दे तो बड़ा कठिन है ये कार्य करना। ऐसा बांध के अपना सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए कि इसको बांध दिया जाता कि हमको तो सुख मिले, ये भी एक सूक्ष्म स्वार्थ है, ऐसा सुख नहीं लिया जाता। उनकी माता ने क्या किया, शांडिल्य गोत्र नाम की एक माधवी कन्या थी, सर्वगुण संपन्न थी, बड़ी भक्तिमता भी थी, लेकिन रामदत्त जी का कोई उसमें अनुराग नहीं था। उन्होंने विवाह निश्चित भी कर दिया कि अमुक अमुक तिथि को ऐसा विवाह करेंगे। अब ये पढ़ाई कर रहे थे, उनको समाचार मिला कि उनकी माता ने माधवी नाम की देवी से उनका विवाह संपन्न कर दिया है। तो उन्होंने माता से जाके कहा, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है। माता थोड़ी दुखी तो हो गई, लेकिन इनका जो संकल्प इतना दृढ़ था ना, कि उस दृढ़ संकल्प के कारण परिवार वालों को पर यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि ये मानेंगे नहीं। तो माधवी को भगवान ने स्वप्न आदेश दिया और स्वप्न आदेश देकर कहा कि तुम्हारा इनके साथ विवाह नहीं हो सकता, लेकिन एक तुम काम करो, उनसे दीक्षा ले लो, वो जो ज्ञान देंगे ना उससे तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। तो भगवान ने जब उसको ये उपदेश दिया तो उसने सभी घर वालों के बीच में बोल दिया कि मैं उनके शरणागत होकर उनसे दीक्षा लूंगे। उसने आके जब अपना भाव व्यक्त किया जो भगवान ने स्वप्नादेश दिया था, तो रामानंदाचार्य जी ने क्या किया, शंख बजाया, शंख बजाते वो बेहोश हो गई, और जो बेहोश हुई उसी समय उसके अंदर सारे भाव प्रकट हो गए, और जैसे जागृत हुई ना तो जागृत होकर तुरंत कहती है कि मेरी तो इनसे दीक्षा हो चुकी है और इनकी कृपा से अभी मैं भगवत धाम को भी जा रही हूँ, और कहते कहते वहीं शरीर छोड़ दिया और भगवत धाम को निकल भी गई। तो ऐसे रामानंदाचार्य का प्रभाव था, शंख बजाया वो समाधि में चली गई, समाधि भंग हुई सीधे भगवत धाम चली गई। माता पिता ने जब बालक का ये व्यवहार देखा ना कि बालक तो बड़ा तेजस्वी है, अनेक अनेक लोग उसके प्रति आकर्षित हो गए, असंख्य नर नारियां सामग्री ले लेकर उनके पास आने लगे, उनका शरण स्वीकार करने लगे। माता पिता भी सोचने लगे हम भी हमारे बालक से दीक्षा ले लेते हैं, उन्होंने भी ऐसी इच्छा व्यक्त की। अब जब ये इच्छा व्यक्त की ना तो क्या हुआ, वो थोड़े से असमंजस में पड़ गए, उनको संकोच हुआ कि मेरी माँ को कैसे दीक्षा दूं मैं, संकोच हुआ। लेकिन माता पिता का आग्रह था तो उन्होंने क्या किया, अप्रकट हो गए वहां से। अब पुत्र को अप्रकट हुआ देखकर माता पिता भयभीत हो गए, दुखी हो गए, इधर उधर ढूंढने लगे उनको, लेकिन कहीं पुत्र मिल नहीं रहा है। हर एक व्यक्ति वहां पर उपस्थित दुखी हो गया कि कहाँ चले गए, अचानक से कहाँ चले गए। उसी बीच में राघवानंद जी आए, और राघवानंद जी ने आके राम महायज्ञ का कार्य संपन्न करवाया, 100 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नियुक्त किया, और राम षडेश्वर मंत्र का 6 करोड़ नाम जप करवाया उन्होंने यज्ञ में आहुतियां दे देकर रामानंदाचार्य को पुनः प्रकट कराने के लिए। और उनके इस संकल्प से रामानंदाचार्य वापस प्रकट हो गए। जब वापस प्रकट हो गए तो हर्षोल्लास छा गया कि भाई हमारे बीच में ये कहीं गए नहीं, उनको देखकर सब लोग खुश हो गए। लेकिन रामानंदाचार्य ने क्या किया, जैसे ही प्रकट हुए ना तुरंत राघवानंद जी को दंडवत प्रणाम करके कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर दया करके क्या मुझे दीक्षा देंगे। राघवानंदाचार्य जी ने राम मंत्र से उनको दीक्षित किया, राम दत्त से नाम हो गया रामानंदाचार्य। कहते स्वयं प्रभु को दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन संसार के जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की। और दीक्षा तो ग्रहण की कि अनेक अनेक विधि नियमों का पालन भी बहुत कड़ाई से करते थे वो खुद, और खुद नियमों का पालन करके दूसरों से नियम पालन करवाते भी थे। इसलिए ऐसे विद्वान लोग आचार्य पद के ऊपर बैठते हैं कि आचरण करते हैं और शिक्षा भी देते हैं। स्वयं भगवान के रूप होने के बावजूद भी दीक्षा ग्रहण की उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि जगत में भगवत प्राप्ति करने के लिए गुरु की कितनी आवश्यकता होती है, ये दिखाने के लिए उन्होंने। स्वामी रामानंदाचार्य की महिमा दिन प्रतिदिन फैलने लगी। सुदोली के राजा थे, उनका एक पुत्र था जो क्षय रोग से बीमार हो गया। किसी ने कहा रामानंदाचार्य को मिलवा, उनके पास ले जाओ, अगर वो आशीर्वाद देंगे ना तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े चमत्कारी संत है। राजा आए और प्रार्थना की आचार्य जी से कि मेरा पुत्र क्षय रोग से बहुत पीड़ित हो रहा है, आप कुछ कृपा करोगे। उन्होंने कहा गंगा सबकी माँ समान है, अपना पुत्र गंगा में अर्पित कर दो 7 दिन के लिए, 7 दिन के बाद गंगा माता स्वयं ही पुत्र बिल्कुल स्वस्थ करके लौटा देगी। अब राजा और रानी सोचे कि अपने पुत्रों को ऐसे गंगा में छोड़ कैसे दे। उनको विश्वास था आचार्य जी के चरणों के ऊपर, लेकिन मोह इतना था कि छोड़ कैसे दे, तो वो तो छोड़ नहीं रहे थे। तो लेकिन पुत्र को पता चल गया कि आचार्य जी ने विधान बताया, पुत्र खुद ही गंगा में जाके कूद गया और गंगा माता ने 7 दिन उनको वहां पर रखा। और 7 दिन रखने के बाद वहां पर इतना स्वस्थ हो गए, कंचन जैसी काया, कोई नख में भी रोग नहीं, और ऐसा सुंदर सा बना के उसको 7 दिन के बाद वापस लौटा दिया। जब पुत्र वापस आए, माता पिता को मिला, तब सबको लगा कि रामानंदाचार्य जी इतने महान है, गंगा माता इतनी महान है कि आचार्य जी ने एक बार बोल दिया तो गंगा माता ने 7 दिन तक बालक को रख के उसको स्वस्थ भी कर दिया। तो ऐसे आचार्य जी का प्रभाव था। एक दिन शिवरात्रि के रात्रि को उन्होंने सोचा दिन में बहुत भीड़ होगी तो अर्धरात्रि को शिव जी के जाके दर्शन कराते हैं। लेकिन शिव जी के दर्शन करने के लिए गए काशी विश्वनाथ मंदिर में, जिसका तो अभी सुंदर जीर्णोद्धार हो चुका है और बहुत अच्छा मंदिर बना है, एक हिंदू संस्कृति के लिए बहुत गर्व की बात है। तो काशी विश्वनाथ जी मंदिर में गए ना, भगवान के पट बंद हो गए थे, उन्होंने देखा कि मंदिर का पट बंद हो गया है, तो आचार्य जी वापस लौट रहे थे। पार्वती देवी ने प्रभु को कहा कि आचार्य आए और वापस लौट रहे, पट बंद है इसलिए। तो शिव जी ने नंदीश्वर को कहा कि जाके पट खोल दो। नंदी जी महाराज गए और पट खोल दिए अंदर से। आचार्य जी ने देखा कि पट खुल गए, आए प्रभु के दर्शन किए, तो वहां शिवलिंग के दर्शन नहीं करे, साक्षात शिव पार्वती के दर्शन कर रहे। आए, उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया, भोलेनाथ जी उनको प्रणाम कर रहे, उनको भी अभिनंदन इस प्रकार से ऐसा भाव प्रकट कर रहे, उनका भी कहते आप तो जीवों के कल्याण करने के लिए स्वयं इस रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा हम तो आप ही की सेवा करते हमेशा। लेकिन रामानंदाचार्य ने भी शिव जी की खूब महिमा गाई, आपस में रामानंदाचार्य और शिव जी के बीच में खूब प्रेमपूर्ण धर्ममय बातचीत होती रही। रामानंदाचार्य ने कहा जगत के कल्याण करने के उद्देश्य से धर्म की स्थापना करके जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें कलयुग ना कलिकाल बड़ा घोर चल रहा है। कलयुग ने सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है और संसार में सब लोग बरबस होकर उसके प्रति आकर्षित होकर चले जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे जीव है जो कलयुग के इस प्रभाव से बचकर प्रभु भक्ति की तरफ जुड़ रहे हैं। ये शिवजी और रामानंदाचार्य ये चर्चा कर रहे हैं, तो शिवजी कहते हैं कि आपके प्रकट होते हुए कलयुग की क्या मजाल, लगे तो कलयुग ही आपका शिष्य बन जाएगा। ये सब चर्चा करने के बाद शिवजी कहते हैं यहां काशी में कोई राम नाम लेता है तो मैं उसको तीन प्रणाम करता हूं। आप तो स्वयं रामानंदी है, आपको कितने प्रणाम करने पड़ेंगे? शिवजी काशी में मुक्ति देते सबको, मरने वाले के कान में राम नाम बोलते हैं और शिवजी खुद भी प्रभु भजन करते हैं हमेशा। बोले शिवजी कह एक राम तीन बार तेहु करहु प्रणाम। एक बार राम बोलने वाले को शिवजी कहते तीन बार प्रणाम में करता हो। देखो फिर शिवजी भगवत महिमा कितनी समझते हैं कि कोई एक बार ले ले तो कहते बड़ा अच्छा काम किया भाई तूने, तेरा धन्यवाद करके तीन बार तो उस प्रणाम करते, इतना आभार मानते उसका कि जगत में कोई राम नाम या कृष्ण नाम लेता नहीं, अगर ले ले तो कितनी बड़ी बात है। शिव जी इतना महत्व समझते हैं, हम लोग हरिनाम करने की बारी आई तो आलस करते हैं। शिव जी भोलेनाथ इतना महत्व समझते इसका और आखिर में भी जीव की मुक्ति नाम से ही कराते हैं काशी में, लेकिन हमारी नाम में रुचि नहीं है। व्यक्ति को कलयुग में विशेष करके नाम में रुचि दिखानी चाहिए। रामानंदाचार्य जी काशी में अपने कुटी पे थे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठे और राम मंत्र का जाप कर रहे थे। उतने में क्या हुआ कि कोई एक मूर्तिमान रूप प्रकट हुआ उनके सामने, और सामने आने में थोड़ा संकोच कर रहा है कि करे तो करे क्या, तो उसने क्या किया, लघु रूप धारण करके उनका जो पंच पात्र था उसमें प्रवेश कर दिया। आचार्य जी ने आचमन करने के लिए जल लिया तो उनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। उन्होंने फटकार लगाई, कौन है यहाँ पर, क्या गड़बड़ी कर रहे हो? तो तुरंत डरता हुआ कलयुग आके सामने खड़ा हो गया। कौन हो कहते तुम? कहते मैं कलयुग हूँ। क्या इच्छा है तुम्हारी, किस उद्देश्य से आए यहाँ पर? कहते स्वामी जी आपसे दीक्षा लेनी है, मेरे युग में लोग माया में गिर गिर के भगवत विमुख हो रहे, क्योंकि प्रभु ने मेरे को प्रकट किया है, ये मेरा समय चल रहा है, मेरे समय में लोग गिर रहे भगवान से विमुख हो रहे, लेकिन मैं जो खुद हूँ मेरा तो कल्याण करो, मैं अपना तो कल्याण चाह ही सकता हूँ ना आपसे। तो कहते तूने आज से पहले फिर वाल्मीकि जी हो गए, वेदव्यास जी हो गए, उन लोगों से दीक्षा क्यों नहीं ली, फिर मेरे पास ही क्यों आया? कहते मैं उन लोगों के पास भी गया था दीक्षा लेने के लिए, लेकिन सबने मुझे बड़ा अधम है, पतित है, लोगों की मति को भ्रमित करता है, ऐसा करके मेरे को धुतकार दिया, किसी ने मेरे को शरण नहीं दी। और अभी मुझे लग रहा है कि कलयुग में आप एक दया के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके चरणों में आने से हो सकता है शायद मुझे शरण मिल जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, आप मुझे कृपा करके दीक्षा दीजिए। तो रामानंदाचार्य ने क्या किया, कलयुग को दीक्षित किया, शिष्य बनाया कलयुग को। जिस कलयुग से संसार के लोग भागते हैं, उसी कलयुग का भय फैला हुआ है जगत में, उसी के कारण लोग संसार में दुख प्राप्त कर रहे हैं, और उसी कलयुग को रामानंदाचार्य ने स्वीकार किया ये कह मानते हुए कि राम जी के अवतार में तो आपने निषाद को और गिद्ध बीलों को अनेक अनेक राक्षसों को आपने तार दिया था, तो फिर इस कलयुग में एक मेरे कलयुग को तारने में आपको क्या कष्ट होने वाला है, इतने को तो आपने पहले ही तारा है, तो मेरे को भी तो तारो। तो जब कलयुग ने बड़ी नम्रता पूर्वक शरण ली ना, तो रामानंदाचार्य ने उसको भी दीक्षित कर दिया। तो ऐसे आचार्य थे जिनका शिष्य कलयुग बनता है, और ऐसे आचार्य संसार में जीवों के कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं, उनका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं होता है। एक बार श्रृंगेर मठ के आचार्य भारती तीर्थ और उनके छोटे भाई माधवाचार्य दोनों रामानंदाचार्य की महानता को सुनते हुए उनके दर्शन करने के लिए काशी में पधारे। काशी में पधारे, आचार्य को प्रणाम किया, आचार्य ने उनका आने का कारण पूछा, उनका सेवा सम्मान किया, उनको बिठाया। उनकी अच्छी भावनाओं को देखकर आचार्य ने किया कि उसी समय शंख बजा दिया। जब शंख बजाया तो दोनों के दोनों भाई समाधि में चले गए। शंख सुनते ही रामानंदाचार्य शंख से बड़े बड़े काम करते थे, और शंख की ध्वनि सुनते ही दोनों के दोनों भाई समाधि में चले गए। और समाधि में क्या हुआ, दोनों भाई ने राम रूप के दर्शन किए, और समाधि टूटने के बाद जो बड़े भाई थे भारती तीर्थ जी, उन्होंने कहा मैं, हमारी इच्छा ये थी कि हमारा एक छोटा भाई है माधवाचार्य, वो आपसे ग्रंथों के सिद्धांत सीखना चाहते हैं, तो आप कृपा करें उनके ऊपर। तो आचार्य जी ने क्या किया, अपना हाथ उसके सर के ऊपर रखा, उसी समय सारे ग्रंथ उसको याद हो गए, सब सिद्धांत उसके क्लियर हो गए, और देखते देखते वो प्रकांड पंडित बन गया। आचार्य की महिमा को वंदन करते हुए दोनों भाई वहां से प्रस्थान कर गए। तो रामानंदाचार्य के ऐसे अनेक अनेक शिष्य हुए, क्योंकि उनका बड़ा प्रभाव था। उनमें से हमने पहले ही जैसे वर्णन किया कि उसमें 12 बड़े महत्वपूर्ण शिष्य थे कि जिनके माध्यम से रामानंदाचार्य ने संसार में भक्ति धर्म को स्थापित किया था। तो रामानंदाचार्य के समय में भी यवन लोगों का बड़ा अत्याचार हुआ करता था, कोई तिलक नहीं धारण कर सकता, शिखा नहीं रख सकता, माला नहीं कर सकता, मंदिर निर्माण आदि के कार्य नहीं कर सकता, बहुत परेशान किया जाता था उन लोगों को यवनों के द्वारा। तो बहुत सारे लोगों ने आके काशी में रामानंदाचार्य से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, यवन तो जीने नहीं दे रहे हम लोगों को, बहुत सता रहे, बहुत कष्ट दे रहे हम सब लोगों को। तब रामानंदाचार्य ने कहा कि मंगल भवन सुमंगल हारी, आप लोग इसका ध्यान करो, भगवान सारे अमंगलों का हरण कर देंगे, क्योंकि भगवान अपने आप में मंगल स्वरूप है, करके आश्वासन देके रामानंदाचार्य ने क्या किया, उन सबको वहां से विदा किया। और अभी रामानंदाचार्य को यवनों को शिक्षा देनी थी, क्योंकि वो बार बार बेमतलब के हिंदुओं को परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम से शंख बजाया, और ऐसी भयंकर गर्जना की शंख की कि संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी मुल्ला और मौलवी थे ना, वो जब भी नमाज पढ़ने बैठते तो उनकी जीभ टेढ़ी हो जाती, एक भी शब्द नहीं बोल सकते थे, जैसे ही प्रयास करे तुरंत जीभ टेढ़ी हो जाए, बाकी चर्चा कर सकते हैं लेकिन नमाज पढ़ने बैठे के जीभ टेढ़ी हो जाए। एक की दो की, पूरे भारत भर में जितने भी मुल्ला मौलवी थे सबकी जबाने टेढ़ी हो गई। ऐसा प्रभाव हुआ रामानंदाचार्य का, सब लोगों ने आपस में विचार किया कि एक साथ पूरे भारत के मौलवियों की जबान टेढ़ी हो गई, ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति का कार्य लगता है। तो इनमें से इब्नुर और मीरत की नाम के दो फकीर थे, उनमें उन्होंने कहा कि ये कार्य हो सकता है काशी में बैठे हुए एक रामानंदाचार्य जो हिंदुओं के फकीर है उनका हो सकता है, क्योंकि वो बड़े सिद्ध प्रकृति के संत हैं, हो सकता है शायद उन्होंने किया हो। तो उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि उनसे मिलने चलते हैं, लेकिन मिलने आने का किसी का साहस नहीं हो रहा था कि मिलने कैसे जाए, क्योंकि पहले उन्होंने इतने अत्याचार करके रखे होते क्या मुंह देखे मिलने जाए। तो उन्होंने क्या सोचा, अपनी ही जाति के कबीर जी है, कबीर जी को हिंदू भी मानते थे अपनी तरफ है और मुसलमान भी मानते थे अपनी तरफ है, तो कबीर जी अपनी ही जाति के सम जाति के व्यक्ति है, उनको बातचीत करके उनको ले जाते हैं। जब कबीर जी के पास गए, कबीर जी तो रामानंदाचार्य के शिष्य थे, साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, कबीर जी के पास गए तो कबीर जी क्या कहते, दिन भर रोजा रहत है रात हनंत है गाय। दिन में कहते बड़ा उपवास का नाटक करते हो, रोजा करते हो और रात को गाय मारते हो, ऐसा कष्टपूर्ण कार्य करते हो, ये तो खून व बंदगी कैसे खुशी सुखाए। अब इतना ज्यादा गलत कार्य करते हो और फिर आप आशा करते हो कि आपका सुख हो, कहां से सुख हो जाएगा आप लोगों का। कबीरदास जी ने उल्टा और फटकार लगाए उनको, लेकिन सब कबीर जी के चरणों में गिर गए, कहते कृपा करो हमारा, हमको मिला मिलवा दो उनसे। कबीर जी के माध्यम से वो सब लोग आए और मिले, मिले तो क्या हुआ, उन सब ने विनती की और रामानंदाचार्य ने उन सब की उपस्थिति में ही शंख बजाया। जैसे ही शंख बजाया कि तुरंत जितने भी आए थे मुल्ला मौलवी सब बेहोश हो गए, और उनके सपने में उनके पैगंबर आए और उन्होंने कहा जो सामने रामानंदाचार्य जी है ना, वो जो कहते हैं वैसा मानो, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ये बड़े शक्ति संपन्न है, इसलिए इनकी हर एक बात को आपने स्वीकार करना है, कुछ भी अन्यथा नहीं लेना है। उनको इस प्रकार से पैगंबर ने स्वप्न दिया, रामानंदाचार्य ने पुनः शंख बजाया, उनकी मूर्छा भंग हुई। मूर्छा भंग हुई तो सभी ने आचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और खूब माफी मांगी, और खूब माफी मांगी तो आचार्य जी ने आखिर में उनको क्या कहा, 12 चीजों के ऊपर कहते हैं तुम अपने बादशाह से हस्ताक्षर करके ले आओ, कि आज के बाद तुम ये 12 कार्य नहीं करोगे जो हिंदुओं के विरोध के है। वो अभी उनको मानना पड़ता था, ऑप्शन नहीं था कोई। वो बादशाह के पास गए, उनको समझाया कि पूरे भारत के मौलवियों की जबान टेढ़ी हो चुकी है इन आचार्य के कारण, अगर ये चाहे तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने शर्त रखी है, क्या शर्त रखी है, जजिया कर को हटाओ, हिंदू मंदिर बनने में कोई बाधा नहीं देनी चाहिए, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाना, फिर 4 नंबर पे गौ वध बंद करो, 5 नंबर पे धर्म ग्रंथों को नष्ट नहीं करोगे, 6 नंबर पे नारियों का अपहरण नहीं करोगे। देखो उस समय भी ये लोग ये काम करते थे, मतलब स्वभाव से ही बड़े राक्षसी प्रकृति के, इसलिए हमारे आचार्यों का देखो भाव कैसा है, तुम तुम्हारा जीवन जियो, जहां हो आपके जो नियम लगते हो लगाओ, आप अपना काम करो, लेकिन हमारे कार्य में दखल अंदाजी मत करो, हम अपना करेंगे। इसलिए जबरदस्ती ये कई बार लोग ऐसा कहते ना, अरे क्या किसी से घृणा रखनी, भाई भाई समझने का, आत्मा के नाते तो वास्तव में सब भगवान के अंश होते हैं, लेकिन जगत में व्यवहार कार्य जब करना होता है तब ऐसे कार्य के अंतर्गत व्यक्ति अपने समुदायों के बीच में व्यवहार करता है। भक्ति करने का अधिकार हर एक व्यक्ति का है, मनाही नहीं है, लेकिन ये समझ उन लोगों में भी तो होनी चाहिए, फिर सिर्फ एक ही पक्ष में नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों के ऐसे उपद्रवी स्वभाव के कारण रामानंदाचार्य ने क्या कहा, आप लोग जो हिंदुओं के ऊपर व्यर्थ के जो अत्याचार गुजारते हो ना, वो बंद करो, बाकी आप अपना जो जीवन जीते हो, नमाज पढ़ते हो, जो करते हो अपना करते रहो, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शंख घंटा बजना चाहिए, उसको बंद नहीं कराना। पहले तो बड़ी परेशानी थी, बजने नहीं देते थे, आवाज नहीं आनी चाहिए कहते। कुंभ आदि पर्व को रोका ना जाए, कथा कीर्तन को ना रोका जाए, हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन कर सके, ऐसा होना चाहिए। और जितने भी हिंदुओं के उत्सव त्यौहार आते हैं वो मानने चाहिए। और ब्याह समय चढ़ी पाल की हिंदू दुल्हन जाए, मस्जिद समूह उतर के चले ना अपने पाए। पहले लोग क्या करते थे, ब्याह के समय में कोई हिंदुओं की दुल्हन पालकी में बैठ के जाती थी तो मस्जिद आता तो नीचे उतार देते थे और यहाँ से पैदल चलो मस्जिद है, ऐसा फोर्स कराते थे। कहता ऐसा कोई फोर्स नहीं चलेगा, कोई नीचे नहीं उतरेगा, वो जैसा जा रही वैसे ही जाएगी। बादशाह से जाके ये 12 चीजें प्रमाणित करा के लाओ, ये मान्य करा के लाओ। अभी क्या हुआ, सारे लोग गए बादशाह के पास। बादशाह गयादुद्दीन तुगलक उसके पास गए और जाके सारी प्रस्तावना रखी। अब मन तो नहीं है, दुष्ट प्रकृति का मन कैसे होगा ये सारी बातों को मान लेना। उनको तो अत्याचार करने में आनंद आता है, वो कहाँ किसी को शांति से जीने देंगे। तो अब मन नहीं मान रहा, लेकिन क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है कोई, क्योंकि सिद्ध संत ने पकड़ के रखा है सबको। अभी तो जबान टेढ़ी हुई है, अगर नहीं जब ठीक चले तो शंख बजाएंगे तो सब टेढ़े हो जाएंगे। अभी मजबूर है, क्या करें, इसलिए वो चुप करके बैठे रहते, नहीं तो वो किसी को ना सुने। उनकी शांति का मतलब ही नहीं समझना के उनके अंदर दया का भाव है। वो तो जब तादाद बढ़े तब समझने का कि शांति कितनी होती है। हम किसी की ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन ऐसी हिस्ट्री में हमेशा चलता आ रहा है, ये किसी के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं है। कितने कितने हमारे महान लोगों ने बलि दे दी है, फिर आज भी हम अगर बोलेंगे नहीं यार वो तो बड़े अच्छे ही होते हैं, हम अच्छे तो सब अच्छे है, लेकिन अगर उतनी बलि उन्होंने दी, अगर हम ऐसे हल्के स्टेटमेंट देंगे, उन लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना बलिदान दिया, वो व्यर्थ गया सब। गुरु लोगों ने अपने 4 पुत्रों को मरवा दिया सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, उनको क्या शौक होता था। लेकिन कुछ लोग बलि देते हैं हिम्मत करके धर्म की रक्षा करने के लिए, तो बाकी लोगों को शांति से जीने को मिलता है। कहाँ हिस्ट्री में ऐसा आता है वर्णन कि हिंदू संस्कृति वाले लोग, सनातन संस्कृति वाले लोग भारत छोड़कर बाहर गए और वहां पर जाके उन्होंने दूसरे जीवों के ऊपर अत्याचार किया, ऐसा कहाँ हिस्ट्री में आता है। सभी लोग तो भारत के ऊपर आए, सारे पाश्चात्य संस्कृति के लोग जितने भी गिनो, मलेच्छ गिनो या यवन गिनो या जितने भी गिनो, सब तो भारत आए थे। भारत कहाँ किसी को परेशान करने गया था। भारत के तो जो सनातन संस्कृति के जो वासी थे वो तो वास्तव में बड़े उदार प्रकृति के थे, वो तो धर्ममय थे, लेकिन यहाँ पर आके लोगों ने इतना परेशान किया कि शांति से वो अपना धर्म का पालन भी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार रामानंदाचार्य के कहने पर ये कार्य तो हो गया, लेकिन रामानंदाचार्य के पास एक अयोध्या से गज सिंह देव जी आए और उन्होंने आके कहा कि स्वामी जी मैं बड़ा दुखी हो गए थे, मेरे चाचा हरि सिंह देव वो कहते हैं जुनखा तुगलक के उपद्रव के कारण जंगल में चले गए और वहाँ एकांतवास कर रहे, और अयोध्या की सारी प्रजा दुखी है, यवनों ने उसके ऊपर राज्य किया है, लोगों को खूब मारते हैं, उनकी बहु बेटियों को उठा कर ले जाते हैं। 20,000 हिंदुओं को उस समय अयोध्या में उन्होंने बलवश मुसलमान बनाया, लोग बहुत तड़प रहे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो उस समय गजसी देव जी ने आके जब रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रार्थना की तो आचार्य ने आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा वहां पर। और आचार्य अपने शिष्यों को लेकर अयोध्या गए और सभी को इकट्ठा करके सरयू में स्नान कराया, और जिन जिन लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था वो सुन्नत के जो चिन्ह थे उनके शरीर के ऊपर, मुसलमान सुन्नत कराते, उनके जो चिन्ह थे सबको सरयू में स्नान कराया ना, सभी के सुन्नत के चिन्ह गायब हो गए और सबको वापिस से उन्होंने हिंदू बना दिया। तो उस समय भी रामानंदाचार्य ने ऐसे बरबस हिंदू जो थे, जो मुसलमान बने थे हिंदू, उनको वापस से हिंदू स्वीकार करवाया था 20,000 लोगों को अयोध्या में ही। और वो सब खुश हो गए कि हम पुनः हिंदू हो गए, अभी हम हमारी संस्कृति को अभी ठीक से पालन कर सकते हैं, अभी लोग हमको धुतकारेंगे नहीं। तो कितने कितने लोगों को उन्होंने धर्म में मदद की है। इसलिए आचार्य जब प्रकट होते हैं तो अनेक अनेक लोगों का लाभ करते हैं। रामानंदाचार्य की इस विशेषताओं के कारण नारद मुनि एक बार उनके पास आए और कहते कि अनेक दिव्य ग्रंथ होने के बावजूद भी आप एक अपने विशिष्ट अद्वैत धर्म के एक आनंद भाष्य लिखिए। और नारद मुनि की प्रेरणा से रामानंदाचार्य ने आनंद भाष्य को लिखा, विशिष्टाद्वैतवाद, ये उनके संप्रदाय का भाष्य था। और जब उसको लिखा तो उनको उन्होंने सबसे पहले अपना जो शिष्य था अनंतानंद जी उनको पढ़ाया, जो उनका सबसे प्रधान पहला शिष्य था उसको पढ़ाया, और उसके माध्यम से अनेक शिष्यों को फिर इस भाष्य का ज्ञान कराया। तो जब काशी में ग्रहण के समय में जब बहुत सारे साधु संत एकत्रित हुए थे तब ग्रंथ ऊपर चर्चा हो रही थी, और उस समय ये आनंद भाष्य जो विशिष्ट अद्वैतवाद में संपन्न हुआ था उसकी चर्चा हो रही थी कि वेदव्यास जी के द्वारा बनाए गए शास्त्रों के अनुरूप कितना प्रमाणित है। तो अनेक लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो रहा था कि इतना तो प्रमाणित नहीं होगा, इतना विशिष्ट नहीं होगा। तो वहां पर क्या हुआ, रामानंदाचार्य तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रामानंदाचार्य का पक्ष रखने के लिए स्वयं वेदव्यास जी ही प्रकट हो गए, और वेदव्यास जी ने खुद इस बात का प्रमाण दिया कि ये जो आनंद भाष्य है जो विशिष्ट अद्वैतवाद में प्रकट किया गया है रामानंदाचार्य जी के द्वारा, ये मुझे अत्यंत प्रिय है और ये पूर्ण वेद सम्मत है। तब सभी लोगों ने उसको प्रमाणित माना, उस भाष्य को, और सबके मन में जो संशय था वो उसी समय नाश हो गया। तो वेदव्यास जी भी स्वयं आके रामानंदाचार्य जी के तरफ से ये कार्य संपन्न किए। रामानंदाचार्य ने बाद में अपने कुछ शिष्यों को साथ में लेकर संपूर्ण भारत भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की, दिग्विजय यात्रा उन्होंने आरंभ की। उस संपूर्ण भारत में उन्होंने काशी से यात्रा आरंभ की और प्रयाग होते हुए चित्रकूट में गए, और चित्रकूट में भगवान राम जी के भाव में भावित हो गए, और उनके जितने भी शिष्य थे उनको उनकी कृपा से क्या हो रहा दिख रहा है कि वहाँ सुंदर सा चित्रकूट दिख रहा है जिसमें सीताराम लक्ष्मण विराजे हुए हैं पर्णकुटी में, और दूसरे तरफ से भरत जी माताओं को मंत्री सुमंत और वशिष्ठ मुनि आदि सबको लेकर आए हैं राम जी को मनाने के लिए। राम भरत का मिलाप हो रहा है, भरत जी के प्रेम के कारण सब लोग बड़े गदगद हो चुके। ये चित्रकूट की सारी लीला उन शिष्यों को वहां दिखाई पड़ रही है और सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये लीला के बाद अचानक से जब लीला संवरण हुई तब लोगों को पता चला कि वास्तव में लीला जो हमको दिख रही थी त्रेता की लीला कलयुग में हमको रामानंदाचार्य के आशीर्वाद से पूरी देखने को मिली, जैसी त्रेता में हुई थी वैसी लीला वहां पर उन्होंने रूप देखी भगवान राम जी की। तो रामानंदाचार्य की इतनी विशेषता थी। वहां से मिथिलापुरी होते हुए वो जगन्नाथपुरी के लिए गए जिसको जगदीश धाम कहते हैं, जगदीशपुरी, जहाँ स्वयं जगन्नाथ भगवान विराजते हैं। और वहाँ पर जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद कपिल तीर्थ में गंगा सागर को गए, जहाँ पर गंगा सागर से मिलती है, जहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की, वहाँ कपिल भगवान का आश्रम है, और वहाँ पर सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ कपिल मुनि के आश्रम पे गंगा के माध्यम से। तो वहाँ पर उन्होंने कपिल भगवान के दर्शन भी किए और गंगा का महत्व भी गाया। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा गंगा सागर का महत्व भी गाया कि अनेक तीर्थों में बार बार जाओ लेकिन गंगा सागर एक बार, मतलब इतने में पर्याप्त हो, ऐसा महत्व गाया, क्योंकि कपिल भगवान हमेशा वहाँ पर तपस्या किया करते हैं। उसके बाद जगन्नाथपुरी में जब पहुंचे थे तो जगन्नाथपुरी में क्या हुआ, वहां के राजा ने कहा कि कभी कभी समुद्र यहां पर नगर में प्रवेश कर जाता है और हम लोगों को बड़ा कष्ट उत्पन्न होता है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि समुद्र अपने निर्धारित जो सीमा है उसको तोड़े नहीं। तो रामानंदाचार्य ने कबीरदास जी को एक दंड दिया और कहा जाके समुद्र के तट के ऊपर इसको जाके गाड़ दो और समुद्र को कह देना मैं जो सूचना दे रहा हूँ वो कि आपने ये दंड तोड़ के अभी आगे नहीं आना है, यहीं पर पीछे रहना है, और दंड गाड़ के निकल गए। तब से कहते समुद्र वहाँ पर शांति के रूप में रहने लगा और उन्होंने चंदन तालाब जहाँ पर भगवान को चंदन तालाब में भगवान को स्नान कराया जाता है, उनकी बोट यात्रा की जाती है, उसका जीर्णोद्धार किया जगन्नाथपुरी में, और वहाँ से रामेश्वरम के लिए निकले दक्षिण में। जब रामेश्वरम पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि वहां वैष्णव और शिव के गण सेव्य उनमें हमेशा झगड़ा चलता है और सेव्य गणों ने रामेश्वर के ऊपर अधिपत्य जमा कर रखा हुआ है। तो उद्धवपूर्ण तिलक लगा के कोई भी रामेश्वर में जाता तो उसको जाने नहीं देते, कहते हटा के त्रिपूर्ण कर दो ऐसे तो ही जाने को मिलेगा। रामानंदाचार्य को भी रोक दिया, उद्धवपूर्ण तिलक धारण करके आप नहीं जा सकते, त्रिपूर्ण कर दीजिए। जब रामानंदाचार्य को जब रोक दिया ना तो स्वयं शिवजी प्रकट हो गए वहां पर और शिवजी ने प्रकट होकर उनके गणों को कहा ये तो इतने महान है आप इनको मत रोकिए। अब वो शिवजी खुलकर नहीं कह रहे कि ये कौन है वास्तव में, रामानंदाचार्य के लिए स्वयं शिवजी प्रकट हुए और शिवजी के प्रकट होने के कारण सारे के सारे रामानंदाचार्य के साथ जितने भी उनके गण थे वो सब जाकर रामेश्वरम में भगवान के दर्शन करते हैं शिवजी के, उनकी स्तुति आदि करते हैं। तो इस प्रकार रामानंदाचार्य ने जाति बारी में वहाँ पर सबको ये कहा कि आज के बाद यहाँ पर जितने भी वैष्णव आएंगे उद्धवपूर्ण तिलक किए हुए आज के बाद आप किसी को नहीं रोकोगे। अभी उन्होंने मान लिया हम किसी को नहीं रोकेंगे, नहीं तो पहले लड़ाई झगड़ा चलता था उनका, लेकिन बाद में वो किसी को नहीं रोकते अभी। उससे आगे रामानंदाचार्य विष्णुकांक्षी में गए, वहाँ पर एक आचार्य वैष्णव था जिसने कबीरदास जी को झूलाहा कहा और बड़ी निंदा की कबीरदास जी की। तो एक वैष्णव की निंदा करने के कारण सभी लोगों के देखते देखते क्या हुआ, भगवान को ये घटना अच्छी नहीं लगी और तुरंत धरती फटी और जिसने कबीरदास जी की निंदा की ना सबके सामने देखते देखते धरती में चला गया अंदर, और सबने एक मत से मान लिया कि वैष्णव निंदा का परिणाम कितना तत्काल होता है। ऐसे महान वैष्णव के प्रति अगर कोई निंदा करेगा तो उसको भगवान कितना शीघ्र दंड देते हैं, यह वहां पर साबित किया गया। कांची से आगे रंगनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए गए और रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर रामानंदाचार्य जी के प्रति कुछ लोगों ने संदेह उत्पन्न किया तो रामानंदाचार्य जी ने शंख बजाया और वहां से अप्रकट हो गए। और अप्रकट होकर रंगनाथ जी का जो निज मंदिर जहां रंगनाथ जी विराजमान होते हैं वहीं पर सीधा रंगनाथ जी के पास ही प्रकट हो गए। और रंगनाथ जी के पास प्रकट हो गए तो रंगनाथ जी भी सामने प्रकट हो गए। और रंगनाथ जी और रामानंदाचार्य आपस में एक दूसरे के प्रति चर्चा कर रहे हैं। रंगनाथ जी और रामानंदाचार्य एक भक्त और भगवान आपस में चर्चा कर रहे, एक दूसरे को गले लगा रहे हाँ। और रंगनाथ जी ने अपनी प्रसून माला थी वो रामानंदाचार्य के गले में भी पहना दी। जब पुजारी ने आके देखा तो क्या देखता है कि रामानंदाचार्य तो जो अप्रकट हुए थे वो तो यहाँ रंगनाथ जी के पास में ही है। तब सबको लगा कि इनके प्रति हमने जो भाव व्यक्त किया, संदेह उत्पन्न किया, वो तो ठीक नहीं था, ये तो बड़े महान व्यक्ति है। वहां से रामानंदाचार्य यहां पर आए, दक्षिण भारत से भ्रमण करते करते गुजरात प्रांत में आए और उन्होंने गिरनार, प्रभा क्षेत्र, द्वारिकापुरी से भगवान के दर्शन करते हुए राजस्थान में आबू गए। आबू में रघुनाथ मंदिर है ना, ये उसकी हिस्ट्री बोलती है। यहाँ भक्तमाल में वर्णन किया है कि वो आबू पर्वत पर गए और उसके बाद पुष्कर तीर्थ में गए। रघुनाथ मंदिर में वहां पर जो भगवान राम जी का जो विग्रह है ना, उसकी हिस्ट्री वो लोग यही बताते हैं कि इस विग्रह को रामानंदाचार्य ने स्थापित किया था, रघुनाथ जी के विग्रह को। हम भी जब दर्शन करने गए थे तो हमको भी यही कहा था उन्होंने कि स्वयं रामानंदाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। बड़ा अच्छा मंदिर है, माउंट में ऊपर नखिल के पास में। यहाँ पर वैष्णव ने अपने ग्रंथों में वर्णन भी किया है उसका। वहाँ से पुष्कर तीर्थ को गए और वहाँ से पुष्कर तीर्थ से बाद फिर वृंदावन पहुँचे। जब वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पर भगवान कृष्ण के गोप मित्रों को देखा तो इतने भावुक हो गए। और जितने भी वृंदावन में गोप थे ना, जो बालक जो भगवान के मित्र स्वरूप में, सबको भंडारा खिलाया उन्होंने खूब जी भर के। भावुक हो गए, सब आओ भंडारा खाओ। तो भंडारा चल रहा था उतने में एक बालिका आई उनके पास में और बालिका आके उनसे कुछ मांग रही है, बाबा खीर दो। तो बालिका का रूप देखते, इतना अद्भुत रूप बालिका का, तो अपने दिव्य दृष्टि में देख लेते कि तो बालिका कोई नहीं है, तो ब्रजेश्वरी राशेश्वरी स्वयं राधा रानी है। तो बालिका को गोद में बिठाया और गोद में बिठा के खीर खिलाई। फिर उनके मन में भाव आया, दूसरे दिन ब्रज में जितनी भी बालिकाएं थी सारी बालिकाओं को भोजन कराया, भंडारा कराया। और तीसरे दिन सारे ब्रजवासी, कोई भी नहीं छोड़ा, सारे ब्रजवासी बूढ़े बुजुर्ग जितने भी थे सबको भंडारा कराया। और तीन दिन भंडारा कराया, खूब हरि भजन कीर्तन किया, वृंदावन की खूब महिमा गाई। और तीन दिन के बाद फिर वहां से आगे उन्होंने बद्रिक आश्रम के लिए प्रस्थान किया। नर नारायण भगवान के वहां पर बद्रिक आश्रम में दर्शन किए और नर नारायण भगवान के दर्शन करने के बाद कश्मीर में देवेंद्र पंडित को उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। वो अहंकारी घमंडी था, उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया। और हराने के बाद फिर नैमिषारण्य से अयोध्या और अयोध्या से फिर बाद में काशी को पुनः पहुंचे। ऐसा संपूर्ण भारत की यात्रा उन्होंने की, दिग्विजय यात्रा जिसको कहते हैं, जहां पर अनेक जीवों को उन्होंने भक्ति में भी लगाया और प्रपंजी पाखंडी प्रकार के जो लोग थे, जो भक्ति विरोधी, उनको ठीक भी किया उन्होंने। और पूरी ऐसी यात्रा करने के बाद जब काशी में पुनः पधारे तो काशी के लोग तो ऐसा मानने लगे जैसे दिवाली के दिन राम जी लंका से आए थे ना अयोध्या, ऐसा तो काशी के लोग मानने लगे जब रामानंदाचार्य काशी में गए। इतना उमंग, इतना उत्साह, सारी काशी को सजाया, हर व्यक्ति घर से बाहर आया रामानंदाचार्य का स्वागत करने के लिए काशी में, और खूब भजन कीर्तन होता रहा रामानंदाचार्य के आगमन पे। बुढ़े क्या, बच्चे क्या, नर नारी क्या, हर एक व्यक्ति उनका दर्शन करने के लिए वहां पर उपस्थित होता है रामानंदाचार्य के। और रामानंदाचार्य ने काशी में जब उपस्थित हुए तो उनको सभी को देखकर हृदय में इतना भाव जागृत हो गया, दया आ गई, एक वात्सल्य करुणा जिसको कहते हैं ना, वो जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा सारे काशी को भंडारा कराना है अभी। तो उसी समय क्या हुआ, अन्नपूर्णा जी आ गई अपनी सिद्धियों को साथ में लेकर और अन्नपूर्णा जी ने अपनी सारी सिद्धियों को साथ में लेकर सारा भोजन प्रणाली तुरंत प्रबंध कर दिया, तुरंत तैयार कर दिया और देवताओं लोगों को बोला कि आपने परसों ही का काम करना है, आपने परोसना है सबको। और सारे काशी में जितने भी लोग थे सबको पंगत लगाकर बिठाया, अन्नपूर्णा ने बनाया है और देवता बांट रहे। देखो रामानंदाचार्य का वैभव कैसा है कि देवताओं से तो बंटवा रहे हैं और काशी में बैठ के भक्त लोग प्रसाद खा रहे हैं। तो ये महान वैष्णवों के ये चमत्कार है। ऐसे वैष्णवों के आगमन से तो संसार में अनेक अनेक जीव का उद्धार होता है और सदियों तक आगे धर्म जीवित रहता है। तो ऐसे रामानंदाचार्य जी का अद्भुत चरित्र है। 1256 में उनका प्राकट्य हुआ था विक्रम संवत और भगवान का दिव्य संकट प्राप्त करके रामनवमी के दिन विक्रम संवत 1515 1256 से लेके 1515 करीब करीब 260 वर्ष जिए थे वो धरातल पर रामानंदाचार्य। बड़ी लंबी अवधि जिए थे वो। इतनी लंबी अवधि जीने के बाद फिर रामनवमी के दिन भगवान ने खुद जब इच्छा व्यक्त की तो भगवत धाम को वापिस सिधार गए। तो ऐसे महान वैष्णव जिन्होंने संसार में जीवों का कल्याण किया, धर्म को बचाया भी सही। आज हम ये सब लोग जो भजन कर पा रहे, उपद्रवी लोगों को उन्होंने शांत किया तब ताकि धर्म आगे भी बढ़ पाया। तो इसीलिए ऐसे वैष्णव के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। ऐसे वैष्णव की कृपा से ही संसार में भक्ति बढ़ सकती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का